आयात की वजाहत। वाइजा तलक तुम निसा, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो। तलक तुम या पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका रूट वर्ड क्या है? हाँ, तो लाम काफ। इसके मानी क्या है? किसी बंधन से आजाद करना। जैसे अरब क्या करते थे, यानी ऊंट का जो पाए बंधन होता था जिससे वो पाओं को बांधते थे कि ऊंट कहीं इधर उधर ना चले जाए, तो जब उसको खोल देते थे तो कहते थे इतलाकुल इबल, इतलाकुल इबल, कि इबल यानी ऊंट का जो है ना खोल दिया है। तो इसी से उधार के मानी लेकर ये लफ्ज जो है किसी भी बंधन से आजाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी तलाक। जब तुम औरतों को तलाक दे दो, तुम की जमीर किसके लिए आई? मर्दों के लिए आई, क्योंकि तलाक देना मर्दों का हक है। था बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो पहुंच जाएं अपनी अजल को। बलगा पहुंचना है ना, बालाम गैन, बलगा पहुंचना। जब तो वो पहुंच जाएं अजलहुन्ना अपनी अजल को। अजल जो है यही इसका रूट वर्ड है, हमजा जीम लाम। ये मानी देता है मुद्दत, वक्त, मौत के लिए भी ये लफ्ज आता है। तो मौजूदा वक्त से लेकर वादा या मियाद की दरमियानी मुद्दत। तो आजल देर से जो चीज हो, और आजिल आयन के साथ अगर हो तो जल्दी होने वाली चीज। उजलत यानी आजिल, ये इसका ओपोजिट है, आजिल और आजिल है ना, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है। देर से होने के लिए आजिल, और आजिल जिद, जल्दी होना। फिर जब वो पहुंच जाएं अपनी अजल को, उनकी अजल क्या है? उनकी इद्दत है ना, जो उनकी इद्दत है जब वो पूरी कर ले, पहुंच जाए। फला तअदुलू हुन्ना, तो फिर जो है तुम उसमें जो है वो अदल ना करो। तो तअदुलू हुन्ना जो है, ऐन दुआत लाम इसका रूट वर्ड है, इसके मानी है, दरअसल ये लफ्ज जो ऐन दुआत लाम है इसके मानी है पट्ठा, मसल, जिसके साथ पट्ठा पट्ठे होते हैं ना, जिसके साथ सख्त गोश्त होता है। तो रजुलुन अदिलुन, वो शख्स जो गोश्त से गुथा हुआ हो, मजबूत गोश्त से जैसे हो। अदल तो हूं मैंने उसे, अदला यानी पट्ठे की तांत के साथ बांध दिया। तो मजाजन ये लफ्ज यानी उधार के मानी लेकर ये लफ्ज सख्ती से रोक देने के मानी में इस्तेमाल होने लगा। जिसके मसल स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उसको कोई भी चोट या चीजें इतनी जल्दी असरअंदाज उस पर नहीं होती है ना। तो मजबूती के लिए भी ये लफ्ज आता है, और क्योंकि पट्ठा तो वो पट्ठे जिसके साथ सख्त गोश्त होता है, एक होता है ना नरम गोश्त होता है, एक सख्त गोश्त होता है। तो इसी से इसके मानी रुकावट पैदा करना और अड़ंगे डालने के मानी ये देता है लफ्ज। आयन दुआत लाम क्या मानी देता है? रुकावट पैदा करना और अड़ंगे डालना। अड़ंगे डालना क्या होता है? जैसे कोई जा रहा है ना, तो एक बच्चे ने अपनी टांग उसके आगे की और नीचे गिर गया, अड़ंगे है ना। तो ये है। अब क्या है कि औरतों को मर्दों ने तलाक दे दी, उन्होंने इद्दत भी पूरी कर ली, अब वो अड़ंगे ना डालें है ना, उनको तंग ना करें, रुकावटें ना डालें, उनको परेशान ना करें। किस चीज के लिए? कहना अजवाजहुन्ना, कि वो अपने शोहरों से निकाह कर लें, यानी अब वो दूसरे जिन आदमियों से निकाह करना चाहती हैं जो उनके जेर तजवीज शोहर हैं, तो उनसे वो निकाह करें, तो उसके लिए आप उनको तंग ना करें। तो न कहा या अन कहना में न कहा, नून का हा पहले भी पढ़ चुकी हैं, मानी क्या है? अकद करना, मिल जाना। निकाह के लफ्जी मानी क्या है? मिल जाना। जैसे नकहल मतरुल अर्द, बारिश मट्टी में मिल गई, जज्ब हो गई। तो तनाकहू क्या है? एक दूसरे से शादी करना, कि वो निकाह कर ले अपने जौज से, अपने शोहर से। इजा तरादउ बैनहुम, जबकि वो आपस में जो है वो राजी हैं, है ना। तरादउ का रूट वर्ड क्या है? रादवाद, या एक दूसरे से राजी होना, वहम रजामंदी से मामला तय करना। बिल मारूफ, मारूफ के मुताबिक। तो मारूफ जो है इसका रूट वर्ड क्या है? ऐन रा फा, उर्फ। जालिका युअजु, ये वाज किया जाता है। युअजु का रूट वर्ड क्या है? वाओ ऐन ज़ोए, वाज। वाज और नसीहत करना यानी बुरे अंजाम का खौफ दिलाकर नेकी की तरफ माइल करना, ये तुम्हें नसीहत की जाती है, वाज किया जाता है बेही इसका। मन काना मिनकुम, जो कोई हो तुम में से, युमिनु बिल्लाही, ईमान रखता अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, जालिकुम अज़का लकुम, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीजा है। अज़का का रूपट है ज़ा काफ वाव, ज़को, मानी क्या है, बातनी लिहाज से पाकीजा तरीन चीज, और ये अफ़लु के वजन पर है ना, अफ़दलु के वजन पर, इसम तस्वील है, लेकिन चूंकि इसके अंदर हर्फ इल्लत है ना, जैसे आखिर में या नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका आपको वो खास वजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन है ये इसम तस्वील। असल में ये क्या था, अफ़लु के वजन पर यह था अज़कबू, असल में क्या था अज़कबू, तो अज़कबू मुताबकत की वजह से वो, क्योंकि वो हर्फ इल्लत है और मुश्किल से ये अदायगी होती है ना अज़कबू, तो वो गिर के अज़का रह गया, बातनी लिहाज से पाकीजा तरीन, ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए जो है वो ज्यादा पाकीजा तरीका है। वो अतहर, और अतहर जो है तोहा रा तोहर से है, और ये भी पाकी के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और अतहरु भी इसम तफ़ज़ील है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा पाकीजा है, ये ज्यादा पाक है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, वन तुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। वल वालिदातु, वल वालिदातु, तो वल वालिदातु जो है इसका रूपवर्ड क्या है, शाबाश, वोलाम दाल, और वोलाम दाल जो है ये वलद के लिए भी आता है, और वलद किसे कहते हैं, वलद बेटे को कहते हैं, है ना, तो मैंने आपको बताया था पीछे वलद और किसके बारे में एक और बात भी कही थी, इस्म जिन्स है, शाबाश, ये इस्म जिन्स है, तो यहाँ पर ता जो है ये क्या बता रही है, लंबी ता, हाँ मोनस के लिए है कि वल वालिदातु, हाँ माए, माओ के लिए आ रहा है, यानी बच्चे वाली औरतें, वल वालिदातु बच्चे वाली औरतें, युर्देना दूध पिलाएं, युर्देना का रूपट है रा द्वाद ऐन रदा, और इसके मानी है दूध पिलाना, दूध पिलाना, और ये लफ्ज जो है जैसे आपको तो पता ही है कि दूध पिलाना यानी हमारे यहाँ ये चीज बड़ी मशहूर है, और इसी से कहते हैं कि रजाई भाई कि वो दूध पिला, दूध की वजह से आपस में ये भाई हैं, तो रदा दूध पीना और युर्देना पिलाना, तो अरबी जबान में जो शख्स कंजूस होता है ना उसको कहते हैं लईम उन रादे, लईम तो कमीने को कहते हैं, ठीक है, और रादे यानी दूध पीने वाला कंजूस शख्स, कैसे कहते हैं कि ये वो शख्स था जो इंतहाई बुखल की वजह से रात के वक्त अपनी बकरियों के जो थन है ना पिस्तान उनसे दूध चूस ले, ताकि कोई जरूरतमंद दूध धोने की आवाज सुनकर उस दिन के वक्त अगर वो बकरियों का दूध धोएगा, किसी को पता चलेगा दूध धो रहा है, एक दूध धोने की एक आवाज होती है जब बाल्टी में या बर्तन में दूध गिरता है ना, तो एक आवाज होती है, तो लोग आ जाते हैं कि दूध धो रहे हैं, थोड़ा सा हमारे ग्लास में भी डाल दें, तो रात के वक्त छुप कर अपनी बकरियों के पिस्तानों से दूध जो है वो चूसता है, ताकि जरूरतमंद दूध होने की आवाज सुनकर सवाल ना करे, तो उसको कहते हैं लईमुन रादे, कंजूस आदमी, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो रादियातान, ये बच्चे के अगले दो दांत जिससे बच्चा जो है ना वो माँ का दूध चूसता है, जोर लगाता है, तो उसके लिए भी यानी वो छाती से माँ की से दूध चूसता है, तो रादियातान, तो ये है कि जो माएं जो है वो ये चाहती हैं कि वो दूध पिलाएं औलादहुन्ना अपनी औलादों को अपने बच्चों को, हौलैनी, तो हौल यहाँ पे अगला लफ्ज है, हौल हा वो लाम, हा वो लाम हौल, और इसके मानी क्या है कि एक हालत से दूसरी हालत बदलना, हौल जैसे किसी चीज का मुतगैयर हो जाना, बदल जाना, और दूसरी चीजों से अलग होना, जैसे हाल, हालात। आप कहते हैं आजकल हाल ऐसा है ना, तो हाल तो बदलता रहता है ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी से कहते हैं हाल अल हौल, साल का गुजर जाना, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे हाल जो है, हौल का लफ्ज फिर उन्होंने साल के लिए मुख्तस कर दिया कि हाल अल हौल, साल गुजर गया। इसी से कहते हैं कि साल के पूरे चक्कर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। किसी साल की एक मुअय्यना तारीख से लेकर अगले साल की उसी तारीख का अरसा जो है वो हौल कहलाता है। मसलन यकम शवाल से अगली यकम शवाल जो है वो हौल कहलाएगी, पूरा एक साल। तो जकात है, रदात है, तलाक है, तो इन सब का हिसाब हौल ही के मुताबिक रखा जाता है ना। पीछे आपने ये बात पढ़ी थी कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हो के मुख्तलिफ सवालात आपने पढ़े थे, और उनमें से आपने ये भी पढ़ा था 189 आयत के आगाज में, यस अलूनका अनिल अहिल्ला, के लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती तारीखों के मुताबिक सवाल करते हैं। आगे जितने भी आपने मसले मसाइल पढ़े हैं वो सब यानी आप देख लें, आपने हज का पढ़ा तो हज का ताल्लुक भी चांद से है, फिर आपने उमरे का तो वो भी चांद से है, फिर आपने जो है वो हाँ रोजे का तो पहले गुजर चुका लेकिन बहरहाल वो भी चांद से मुतल्लिक है, फिर आपने इसका पढ़ा कि ये जो इद्दत है, तलाक है, निकाह है, तलाक है, इद्दत है, फिर हलाला है, इला है, तो ये सारी चीजें जो है वो चांद से मुतल्लिक है। तो यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इस चीज की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं के हॉल यानी दो मुकम्मल साल। तो चूंकि यानून लग गया ना, हॉल एक साल है तो यानून लग गया तो 2 साल, हाउल यानी 2 साल, 2 साल का अरसा। कामिल यानी मुकम्मल, दो कमला से कामिलैन। ज्यादातर लोगों ने वो जो सवाल का जवाब था ना मुस्लिमैन और मुस्लिमीन ठीक लिखा है, एक दो लोगों ने गलत लिखा है, ज्यादातर लोगों को उसकी समझ आई है वैसे, है ना, तो आपको तस्निया की समझ आ गई। तो यानून यानून दोनों जगह है, हाउलैनी 2 साल, कामिलैनी मुकम्मल 2। लिमन अरादा, जो कोई इरादा करे, अयुतिम्मा, तो तामीम तम्मा, तामीम मीम तम्मा, मानी क्या है? हाँ शाबाश, खूबसूरती से किसी काम को बगैर किसी नक्श के जो है वो मुकम्मल करना, तो उसके लिए जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आपने ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जब उनको आजमाया, फातम महुन, तो उन्होंने वो उस पे पूरा उतरे, यानी बगैर नक्श के हुसन के साथ उन्होंने वो आजमाइशें जो थी उनको पूरा किया। तो क्या है कि फिर उसको पूरा किया जाए, युतिम्मा पूरा करना। तो कभी कभी ये लफ्ज जो है गिनती, मिकदार या मुद्दत को पूरा करने के लिए भी आता है। एक तो यह ना कि नाकिस चीज को हुसन से मुकम्मल करना, और फिर कभी ये गिनती, मिकदार या मुद्दत को पूरा करने के लिए भी आता है। तो रदाद की मुद्दत पूरी कर दो, रदाद की मुद्दत कितनी पता चली? हौलैनी कामिलैन, 2 साल। वालल मौलूदी, और जो है वालल मौलूदी लहू, मौलूद वैसे किसको कहते हैं? बच्चे को कहते हैं। तो जिसका बच्चा है, लहू, लहू की जमीर बाप के लिए आई है, यानी बाप के लिए फिर बन गया ना। तो बच्चे के बाप को क्या चाहिए कि रिस्क हुन्ना, कि वो उसको रिस्क दे। हुन्ना किसके लिए जमीर आ रही है? बच्चे की माँ, औरत के लिए, कि बच्चे की माँ जो कि दूध पिला रही है 2 साल मुकम्मल, वो उसको खाना दे। वह किस्वा तो हुन्ना, और उनको कपड़ा भी दे। किस्वा तो हुन्ना जो है इसका रूट वर्ड है काफ सीन वाओ, कसो लिबास को कहते हैं और पोशाक को कहते हैं। लिबास के लिए हमें कुरान में दो लफ्ज मिलते हैं, एक तो लिबास, दूसरा जो है ना ये किस्वा। तो लिबास कपड़ा अगर खुद पहने, मतलब इंसान खुद से पहन रहा है तो उसको तो लिबास कहते हैं, लेकिन यानी अपनी पोशाक को या अपने लिबास को, लेकिन किसी दूसरे को अगर पहना रहे हैं तो उसको किस्वा कहते हैं। है तो लिबास लेकिन दूसरे को पहनाना, किसी दूसरे को कपड़ा देना, किसी दूसरे को कपड़ा पहनाना, तो उसके लिए किस्वा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देखिए, जब किसी को आप कपड़ा पहनाते हैं तो कसा, इसी से कसना है ना, तो उसको कस रहे हैं, जैसे बिल्कुल ठीक तरह से चीज सही जगह पर पहुंच जाती है, तो कसना लफ्ज भी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वह किस्वा तो हुन्ना, और उनको कपड़ा पहनाना बिलमारूफ मारूफ तरीके से, यानी जो भी सोसाइटी का रवाज है या जो भी खानदान का रवाज है। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, और ना तकलीफ दी जाए किसी भी नफ्स को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। तो यहाँ पे नफ्स से मुराद मर्द भी हो सकता है, औरत भी, दोनों में से किसी को तकलीफ ना दी जाए, और अगर दी जाए तो कितनी, जितनी के उसकी इस्तेताअत है, जितनी के उसकी वुसअत है। तो वह सीन आयन जो है, यानी आयन कुशादगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ला तुदारा, और जो है वो जरर ना पहुंचाया जाए, दुआ रा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, अजियत देना, अजियत ना दी जाए। वालिदा तुम बेवला दिहा, माँ को तकलीफ ना दी जाए, बेवला दिहा के बेटा उसका है, बच्चा उसका है। वला मौलूद लहू, और ना ही बाप को, बेवला दे ही उसके बच्चे की वजह से। तो मौलूद जो है इसका रूट वर्ड क्या है, मौल अमदाल है ना, वलद, तो मौलूद बच्चे को कहते हैं, तो मौलूदुल्लाहु जिसका बच्चा है, जिसका बच्चा है, इससे मुराद कौन है, फिर बाप। ना तो माँ को तकलीफ दी जाए और ना ही बच्चे वाले को, यानी बाप को तकलीफ दी जाए, बेवला नहीं उसके बच्चे की वजह से। समझ आ गई। वालल वारिस ही, और वारिस पर है मिस्लो जालिक, इसी तरह, यानी अगर किसी का बाप जिंदा ही नहीं है तो उसका दादा है, चिच्चा है, जो भी फिर उसकी परवरिश कर रहे हैं, वो भी इसी तरह औरत का ख्याल रखे, उसको कपड़ा दें, उसको खाना खिलाएं, उसको तंग ना करें। फाइन अरादा फिसालन, और अगर वो इरादा कर लें फिसालन फसल का, फा स्वाद लाम, और फसल का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है, अलैदगी के लिए। तो अगर वो इरादा कर लें, असल में अरादान था, अलिफ के बाद नून था, मर्द औरत दोनों ये इरादा कर लेते हैं, ये फैसला कर लेते हैं कि अंतरा दिन फिसालन, अंतरा दिन फिसालन, यानी अलग कर दिया जाए, यानी बच्चे को दूध ना पिलाया जाए, ठीक है, अंतरा दिन रजामंदी के साथ, मिनहुमा इन दोनों की। तो इसमें भी फिर कोई गलत बात नहीं है कि दोनों फरीकैन बाहमी रजामंदी से ये फैसला कर लें कि दूध छुड़ा देना है। तरा दिन जो है इसका रूप है रा द्वाद या नजर नहीं आ रही, मानी क्या है, एक दूसरे से राजी होना, बाहमी रजामंदी, बाहमी रजामंदी जरूरी है। अगर आप कहती हैं खाली राजी हैं तो ठीक नहीं है, बाहमी तौर पर आपस में एक दूसरे से रजामंद हैं, ठीक है। किस बात पर रजामंद है, फिसालन कि वो बच्चे को दूध ना पिलाएं, फसल जुदाई को कहते हैं ना, वसल मिलाप, विसाल मिलाप, और फसल जो है वो क्या है, अलैदगी। आप बाज किताबों में भी देखते हैं, फसले अव्वल फसले दोम, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, फसल लिखकर वो बताते हैं कि पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, जुदाई हो रही है, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। आम भी इसका इस्तेमाल है वैसे। जब तशावरिन, ये शीन वोरा इसका रूट वर्ड है, और इसके मानी है हुस्ने खूबसूरती, लिबास, मंजर, हैयत, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जाहिरी सामान्य आराइश जो है ना उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह छत्ते से शहद निकालना, छत्ते से शहद निकालना, शिरतुल असल, छत्ते से शहद निकाला, और अल मशार, शहद की मक्खियों का छत्ता, और ये लफ्ज मशवरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, शहद जब आप छत्ते से निकालते हैं तो क्या कितना खूबसूरत सा होता है, मंजर कितना अच्छा सा होता है, फिर असल जो चीज होती है उसके अंदर मोम भी होता है, लेकिन आप असल चीज को निचोड़ कर बाहर निकाल लेते हैं। शहद का छत्ता कभी आपने देखा हो और फिर उसमें से शहद निकला हुआ कभी आप देखें, कि असल चीज जो इतनी खूबसूरत है वो आपको मिल जाती है, तो आप इस तरह से उसको निचोड़ते हैं और निकालते हैं कि शहद आपको मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह से जो मशवरा होता है क्या है, कि एक दूसरे की बात नोटा कर राय मालूम करना, जैसे शहद के छत्ते में असल चीज शहद है, मोम नहीं है, मक्खियां और दूसरी चीजें नहीं हैं, आप शहद ले लेते हैं। इसी तरह बहुत सी लंबी गुफ्तगू में से आप मशवरा करते हैं तो बात को एक दूसरे की तरफ लुटाकर आप असल राय मालूम करते हैं। यह है मशवरा करना के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मशवरा करना कितना अच्छा होता है कि बहुत से लोगों जैसे शहद की मक्खी बहुत से फूलों पर बैठती है, रस निचोड़ती है, फिर वो शहद बनाती है और शहद आपने ले लिया। बिल्कुल इसी तरह से एक बात पर आप मुख्तलिफ लोगों से राय लेते हैं, मशवरा करते हैं, फिर उसमें से उसका रस निचोड़ कर एक राय लेकर एक फैसला कर लेते हैं। मैं इसमें खुद सोच रही थी बैठी कि आपस में लिंक कैसे बना शहद की मक्खी और मशवरे का आपस में, तो मुझे ये लगा कि इसी मशवरा करना दरअसल शहद की मक्खी की तरह रस निचोड़ना है। मशवरा करने वाला जो है ना कभी ना मुराद नहीं होता, तो मशवरा करने में बरकत होती है और हक होता है ये मोमिन का, अगर आपसे कोई वो मशवरा मांगे तो उसको सही मशवरा आप दें। तो वह पेशाब और इन और वो आपस की मशवरे के साथ, आपस की रजामंदी और आपस के मशवरे के साथ, फला जुनाहा अलैहिमा, तो फिर इन दोनों पर कोई भी गुनाह नहीं है। ठीक है, वाइन अरद तुम, और अगर तुमने इरादा कर लिया कि अंतस्तदऊ कि तुम जो है वो दूध पिलाओ, यानी तुम्हारा ये इरादा है कि तुम दूध पिलाओ औलादकुम अपनी औलाद को, अब यहाँ पे किसी और से दूध पिलाने की बात हो रही है, उसकी माँ से नहीं, मर्द ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी औलाद को किसी और औरत से दूध पिलाए, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इजा सल्लम तुम माँ आते ही तुम, जब तुम सलम तुम अदा कर दो, सीन लामीम सलम जो है ये सलामती यानी अमन के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि अब जो भी मुआवजा तय किया हुआ था तुमने कि तुम कितना मुआवजा उसको दोगे, सलम तुम अदा कर दो, उसके सुपुर्द कर दो। आप सलाम करते हैं और उसमें क्या है, अस्सलामु अलैकुम, अमन है, पीस है, सलामती है ना, तो मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो इसी तरह से तुमने बगैर किसी नुकसान के उसको अदा कर दिया। माँ आते ही तुम, जो तुम दे रहे हो, हमजा ताया बिल मारूफ मारूफ के मुताबिक, यानी जो मुआवजा तय करो मारूफ के मुताबिक उसको अदा कर दो। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से, वालमो और खूब जान लो, अन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, कि अल्लाह जो है जो कुछ तुम करते हो उसको खूब जानता है, उसके इल्म में है, तुमने ज्यादती ना कहीं की हो। फिर फरमाया वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम, और वो लोग जो के मर जाएं तुम में से, युतवफ़ौना तो वफात से है, इसका रूपवर्ड क्या है वफात का, शाबाश, वफाया, के तुम में से जो लोग जो है वो फौत हो जाएं, वफात पा जाएं, वफा करें यानी रूह अल्लाह को वापस कर दी जो अल्लाह ने इमानत के तौर पर दी थी। यज़रूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाएं अपनी बीवियों को, यज़रूना, छोड़ने के लिए वैसे तो बहुत से लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे यज़रू है और इसका रूपवर्ड है वो ज़ालरा, वो नजर नहीं आ रहा, ये जो अगला वो आपको नजर आ रहा है ना वो नून, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, शुरू में आएगा वो ज़ालरा वजर। इसका इस्तेमाल दो शक्लों पर होता है, एक तो ये कि किसी चीज को हकीर समझ कर छोड़ देना, कल्ला ला वजर, है ना, दूसरा ये कि किसी काम के करने किसी पर किसी को एतराज या मदाखलत ना करने देना। आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप कर रहे हैं ना तो दूसरा शख्स आके कोई बीच में मदाखलत करना चाहता है, ऐसे नहीं ऐसे रखो, टेबल ऐसे नहीं रखो, कुर्सी ऐसे रखो, या कोई एतराज करता है, आप उसको एतराज और मदाखलत का मौका ना दें। वजर लफ्ज उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंग्लिश में इसके लिए लेट है, लेट मी डू दिस, एग्जैक्ट वजर के लिए लफ जो है वो लेट, एलईटी लेट, किसी को मदाखलत की इजाजत ना देना। तो वजर लफ दो तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक तो ये कि किसी चीज को हकीर समझकर छोड़ देना, और दूसरा ये है कि जब कोई काम आप कर रहे हैं किसी दूसरे को मदाखलत की या एतराज करने की इजाजत ना दें। वह यजरू ना अजवाजन, और जो अपनी बीवियों को जो है वो छोड़ जाए, ये तरफ बस ना वो इंतजार करें, तरबुस, और ये लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, کہ تربص اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کیا روٹ ورڈ بتایا آپ نے؟ رابا سواد، اور اس کے معنی ہے مہلت گزارنا، عدت گزارنا، تربص. تو ویسے عام طور پر یہ لفظ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کو مطلب ایک طرح سے انتظار ہی کی کیفیت ہے نا. ہاں شاباش، زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ انتظار کرنا کہ اس سے جو ہے وہ پھر زیادہ فائدہ ملے. تو وہ انتظار کریں بنفسے بانفسہن اپنے آپ میں، یعنی اپنے آپ کو، اربعت اشہر، چار مہینے، وہ اشرا اور دس دن، ٹھیک ہے. فائزہ بلغنا، جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مقررہ مدت کو، یعنی جو ان کی عدت کی مدت ہے اس کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، پھر ان پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ کر گزریں اپنے نفسوں میں معروف کے مطابق، یعنی اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا فعلنا اور بلغنا اور یہ سب عورتوں کے لیے ہے، نون بلغنا اور فعلنا، پھر اسی طرح انفسہن، اجل ہن، یا پھر تو ہننا ہننا ہے نا، یہ ضمیریں آپ کو بتا رہی ہیں، یہ بھی عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ عورتیں چار ماہ انتظار کریں، چار ماہ اور دس دن کی عدت گزاریں، جب عدت پوری ہو جائے اب وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، کوئی بھی ان کا جو معاملہ ہے تو وہ کر سکتی ہیں. اب کوئی ان پر گناہ نہیں ہے، تو لوگوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ پھر ان کو تنگ کریں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرو گے اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. خبیر، خوب اس کو جو ہے وہ خبر ہے، اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. بلا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اردتم بھی، کہ تم نے جو ہے اگر کوئی اشارہ کیا ہے اس کا، تو اس کا تم پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین را دواد، جو ہے یہ عرض سے ہی ہے. ہاں شاباش، عین را دواد جو ہے اس کے معنی ہیں، جیسے ایک کنارے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بات کو ایک جانب رکھ کر اشارے کنارے میں کرنا. ویسے تو یہ چوڑائی کے لیے آتا ہے نا، عرض چوڑائی، اس کپڑے کا طول کتنا ہے، اس کا عرض کتنا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اور اسی طرح اس کے ایک کنارے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی ایک کنارے سے مراد تھوڑی سی چیز، گویا کہ اشارہ کرنا. اسی طرح پیش کرنا، یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ پیش کرنا کے لیے بھی استعمال کیا، عرضی بھی اسی سے ہے، میں نے عرض کیا ہے، میں نے ایک بات کہی ہے. تو مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ اب کیا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اشارے کنائے سے کوئی بات کرتے ہو، وہ جو عورتیں ہیں ان سے کوئی بھی منگنی کا ارادہ ظاہر کرتے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں سے منگنی کا خطبہ، یہاں پہ خطبہ لفظ جو ہے وہ خاص ہے. تو ویسے تو دیکھیں خطبہ، خطاب کرنا، واعظ کرنا، تقریر کرنا، حاضرین کے روبرو خطبہ دینا، خطبہ بھی اسی سے ہے. تو خطبہ جو ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ منگنی کا پیغام دینا، نکاح کا پیغام دینا. اور منگنی کرنے والے مرد کے لیے بھی آتا ہے خطب، جو منگنی کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ لفظ جو ہے باہم گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی طرف بات لوٹانا، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم وہ عورتیں جو ابھی عدت میں ہیں، ابھی ان کی عدت پوری نہیں ہوئی، یہ لفظ یہاں پہ آپ کو نہیں مل رہے، لیکن بیک گراؤنڈ سارا پس منظر یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس میں مرد جو ہیں کسی کہیں عورتوں کو منگنی کا اشارے کنائے سے ارادہ ظاہر کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اشارہ کر دو عورتوں سے منگنی کرنے کا، او اکننتم، یا پھر جو تم نے چھپایا ہے، فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اکننتم جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف نون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں पहाड़ में जैसे कोई छोटी सी गार हो, छोटी सी खो या गार जहां इंसान को पनाह मिल सके, अकनान अकिन्ना, जैसे औरतों के लिए भी आया है, कअन्नहुन्न बैदुम मकनून। वो औरतें ऐसी हैं जैसे कि अंडे के अंदर छुपी हुई हो ना, बैदुम मकनून, मकनून छुपी हुई को कह रहे हैं ना। तो इसके अकनंतुम जो है ना, काफ नून नून, इसके मादे के अंदर दो मानी खास तौर पर पाए जाते हैं, बुनियादी तौर पर। एक है छुपाना और दूसरा है हिफाजत करना। तो जो चीज छुपी हुई होती है दरअसल वही हिफाजत में होती है, आप इसको यूं याद कर सकते हैं। तो किसी चीज को अगर हम चाहते हैं ना उसकी हिफाजत करें, तो हम उसको किसी महफूज जगह पे जाके छुपा देते हैं। तो वो बात जो दिल में छुपाई जाए उसके लिए भी अकनंतुम लफ्ज इस्तेमाल होता है। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या जो तुमने छुपाया है अपने दिलों में, यानी गार में वैसे कोई चीज छुप रही है, लेकिन इंसान छुप रहा है ना, लेकिन दिल के अंदर जो चीज छुपाई जा रही है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गोया कि जाहिरी और बातनी दोनों लिहाज से ये इस्तेमाल किया जाता है। अलिम अल्लाह अन्नकुम, जान लिया अल्लाह ने कि तुम सतज़कुरूनहुन्ना, कि तुम अनकरीब उनका जिक्र करोगे। सतज़कुरू यानी मर्द जो है उनको कहा जा रहा है कि तुम जिक्र करोगे किनका, हुन्ना उन औरतों का। कौन सी औरतें? जो इद्दत में हैं, शौहर फौत हो गया है और वो अब इद्दत गुजार रही हैं। वलकिन ला तुआइदू हुन्ना, लेकिन तुम उनसे वादा न करना सिरन छुप कर, क्योंकि वो इद्दत में है ना, उनसे कोई पक्का यानी वादा ना करना। इशारे किनाए में बात जाहिर की जा सकती है कि आप भी मंगनी के शादी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वादा नहीं किया जा सकता। इल्ला अन तकूनू कौलम मारूफा, मगर ये कि तुम वो बात कहो जो कि मारूफ हो, यानी मारूफ तरीके से बात करो, यानी कि चोरी छुपे किसी तरह से, बल्कि सोसाइटी के अंदर मारूफ तरीके से बात की जा सकती है। वला तअज़िमू, और तुम अज़्म ना कर लेना, पुख्ता इरादा ना कर लेना। किस चीज का? उकदतन निकाही, निकाह की गिरा का। अभी वो मंगनी में है, अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, अभी तो सवाल ही नहीं है ना के निकाह जो है वो कहो, और तुमने पक्का इरादा ही कर लिया निकाह की गिरह का। उकदा तुम निकाह, अकद गिरह को भी कहते हैं ना। और ये कौन सी सूरत में आता है? हाँ, रब्बि इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उकदतम मिन लिसानी। तो उकद वहां पे भी जबान की गिरह। और कौन सी सूरत में आता है? आखिरी सूरतें जो हैं सूरत फलक, क्या है आयत? मिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उकद। मैं समझी आप ये सबसे पहले कहेंगी, लेकिन ये भी ठीक है, दोनों आपने अच्छी मिसालें दी। तो गिरा के लिए आता है, तो लगता है फिर आपको दुआएं याद हो गई हैं, इसका टेस्ट ले लेना चाहिए। तो क्या है कि तुम पुख्ता इरादा ना कर लेना, उकदतन निकाही निकाह की गिरा का, हत्ता यबलुगल किताबु अजलो, जब तक के पहुंच ना जाए अल किताबु, अल किताब यानी लिखी हुई चीज अपनी मुकर्रम मुद्दत को। तो लिखी हुई चीज से मुराद क्या है? इद्दत। शाबाश, यानी कतबा लिखना और अल किताब यानी जो लिखी हुई चीज है, इद्दत जो है जब तक पूरी ना हो जाए, अपनी मुकर्रम मुद्दत को ना पहुंच जाए, उस वक्त तक तुमने निकाह नहीं करना, इसका पक्का इरादा नहीं करना। प्लानिंग है, तैयारियां हैं, इद्दत पूरी भी नहीं हुई। वालमु, और खूब जान लो, अन्न अल्लाह यालमु मा फी अन्फुसिकुम, कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। फाहज़रू, बस डरो उससे। तो हा जार रा, इसके माने क्या है? मोहतात रहना, किसी के गुस्से से बचना। तो यहां पर जो है क्या है, ये फेले अमर है। फाहज़रू, बस डरो उससे, यानी अल्लाह से डरो। वालमु, और खूब जान लो, अन्न अल्लाह गफूरुन हलीम, कि बेशक अल्लाह जो है वो बख्शने वाला भी है और तहम्मुल करने वाला है। छोटी मोटी गलतियां करते हो उससे तो वो दरगुजर कर जाता है, तहम्मुल कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बड़ी बड़ी गलतियां जो है वो करनी शुरू कर दो।
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم